ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुत्शमो गात परिब्रह्मश्च दैन्यं क्लमाशोक विषाद मोह सर्वे निवृता कृपणस्य जन्तोर् जे जे विशोर्जीव जलार्पणन् मे शुद्ध शुद्धक्षम गात परिभ्रमश्च दैन्यं क्लमा शोक विषाद मोह सर्वे निवृता कृपणस्य जन्तोर् जे जे विशोर्जीव जलार्पणन् मे श्रुतक्षमा गात्र परिभ्रमश्च दैन्यं क्लमा शोक विषाद मोह सर्वे निवृता कृपणस्य जन्तोर् जीजी विशोर्जीव जलार्पणन् मे। धन्यवाद। इसका अनुवाद श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। कृपया मेरे पीछे अनुवाद दोहराइए। जीवन के लिए संघर्ष करते हुए बेचारे चंडाल की जान बचाने के लिए अपना जल देकर मैं सारी भूख प्यास थकान शरीर कंपन खिन्नता क्लेश संताप तथा मोह से मुक्त हो गया हूँ। सुंदर श्लोक है। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। आज पांडव निर्जला एकादशी है। जब भी गौर पूर्णिमा के बाद नया वैष्णव कैलेंडर आता है सबसे पहले भक्त लोग यही देखते हैं निर्जला एकादशी कब है, और तभी से मेंटली अपने आप को तैयारी करनी शुरू कर देते हैं कैसे करूँगा क्या होगा, और एक हफ्ता पहले से ही लोग भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं, भक्तों से आशीर्वाद मांगना शुरू कर देते हैं कि हिम्मत दीजिए निर्जला एकादशी को कर सके। देखा जाए तो बहुत सुंदर अवसर है। आज इतनी भारी संख्या में भक्त लोग इकट्ठे हुए हैं। आज क्या है, सोमवार है। किसी और सोमवार के दिन तो इतने भक्त इकट्ठे नहीं होते, किसी और एकादशी के दिन भी इतने भक्त इकट्ठे नहीं होते। तो जब भक्त इकट्ठे हो जाएं और मिलके भगवान का गुणगान करें कीर्तन करें, अभी गुरु पूजा में विष्णु वाहन प्रभु इतने उत्साहपूर्वक कीर्तन कर रहे थे, सब नाच रहे थे, तो लग रहा था जैसे जन्माष्टमी है या गौर पूर्णिमा है, तो महा महोत्सव है। तो जब भक्त लोग इकट्ठे हो जाएं भगवान का गुणगान करें हरि कथा हो तो महोत्सव है। क्या हो गया, पानी नहीं पिया एक दिन तो क्या हो गया, है ना। एट व्हाट कॉस्ट, क्या कॉस्ट भरनी पड़े, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, लेकिन क्या मिला, इतना कुछ मिल गया। फायदा के नुकसान है, फायदा ही फायदा। बड़े ढीले बोल रहे हैं, अभी तो शुरुआत है दिन के अभी से हरी बोल और क्या। और आपको मालूम है ये एकादशी स्पेशल है। स्पेशल क्यों है ये एकादशी, स्पेशल क्यों है एकादशी? अरे हाँ, ये तो भीमा एकादशी है। भीमा जो विकोदर थे इतना ज्यादा खाते थे, उनके लिए एक क्षण भी भूखा रहना संभव नहीं था, उन्होंने इस एकादशी को रखा बिल्कुल निर्जल, इसलिए इस एकादशी को भीमा पांडव निर्जला एकादशी भी कहते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि ये इस्कॉन संस्था की 50वीं निर्जला एकादशी है हालांकि ऑफिशियल ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि ऑफिशियल डिक्लेरेशन है, एज्यूम कर रहे हैं। 1966 में रजिस्टर हुआ, 67 में पहली निर्जला एकादशी होगी, 2017 में 50th हो गई। तो इसको हमें और उत्साह से मनाना चाहिए। हरी बोल। आप बोलेंगे निर्जला एकादशी के दिन उत्साह क्या होगा कोई उत्साह तो जाहिर होता है हमारा फीस्टिंग से, तो क्या होगा इसमें। लेकिन एकादशी शिला प्रभुपाद कहते हैं एक बहुत विशेष अवसर है। वैसे तो इस पूरे भौतिक जगत को बहुत अशुभ बताया गया है, लेकिन इस भौतिक जगत में कुछ स्थान और कुछ काल भगवत प्राप्ति के लिए बहुत अनुकूल है। जैसे भगवान के धाम में जाते हैं तो वहाँ आध्यात्मिक चेतना को विकसित करना आसान है, अनुकूल है वहाँ का स्थान। इसी प्रकार से कुछ समय, सम फेजेस ऑफ टाइम, बहुत ही अनुकूल होते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, विशेषकर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का जो 11वां दिन जिसको कहा जाता है एकादशी। ये एकादशी का दिन भगवत भक्ति से परिपूर्ण है, सरचार्ज विद डिवोशनल एनर्जी, इसीलिए इसको बोला गया माधव तिथि, है ना, माधव तिथि भक्ति जननी, है ना, भक्ति की जननी है। यतने पालन करें, जो यतन करना पड़े कर लो, क्यों, माधव तिथि है। आप लोग कई बार हम जाकर देखते हैं दिल्ली में बोर्ड लगे होते हैं, एक शाम माधव के नाम, है ना, होता है ना, तो चलो एक तिथि माधव के नाम, एक तिथि मीन्स फुल 24 आवर्स, किसके नाम, राधा राधिका रमन के नाम, तैयार हैं सब, एक तिथि, आज की तिथि राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम के नाम, 24 घंटे पूरे पूरे 24 घंटे। शिला प्रभुपाद कहते हैं एकादशी के दिन जब कोई पूरा निर्जल रखे और जागरण करे उस रात को बोलते हैं हरिवासर, यानी कि हरि का वास होता है, और पूरी रात बिताते हैं क्या, चैंटिंग से, डांसिंग से, और सुबह फिर फीस्टिंग से। तो पूरी रात भगवान के स्मरण में एकादशी बहुत सुंदर अवसर है अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए कि हम कृष्ण का ज्यादा से ज्यादा स्मरण कर सकें, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कॉन्शियस हो सके। ये विशेष भगवान ने इस प्रकृति की रचना की और जीवों को इस भौतिक जगत से निकलने के लिए शास्त्र दिए, और साथ में शास्त्रों में ऐसे प्रावधान दिए कुछ स्पेशल ऑफर्स, है ना, कुछ डेट्स हैं, कुछ तिथि हैं, इसमें आप थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स करोगे एक्स्ट्रा क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति इसके फायदे उठाएगा, थोड़ा सा बुद्धिमान होता है सेल के, एक के साथ एक फ्री तो भाग के जाते हैं। यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि माधव तिथि भक्ति जननी, भक्ति जननी होगी, भक्ति की माँ है ये, इसको क्यों ना जाए, यत्न है पालन करी, कुछ ही तो यत्न करना है, कर लो। तो ये बहुत सुंदर अवसर है अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। कृष्णा कॉन्शियस हमारे बोझे को कम करने के लिए है, हमारे बोझे को बढ़ाने के लिए नहीं है। और जब हम सोचना शुरू करते हैं प्रभु जी निजला एकादशी, निजला एकादशी, निजला एकादशी, है ना, मैं भी खुद इतना चिंतित था इतने दिनों से, भक्तों से प्रार्थना कर रहे थे भैया कृपा करना रख सके, सब एक दूसरे से डर डर के प्रार्थना कर रहे हैं, चेहरे पे बहुत चिंता है कि ऐसे होगी निजला एकादशी, और पिछले एकादशी में तो बहुत बारिश हो रही थी, और फिर पेपर में आया धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, रोज टेम्परेचर देख रहे हैं कल कितना होगा, कल कितना होगा। तो ये नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारे बोझे को बढ़ाने के लिए नहीं है। जो व्यक्ति एकादशी रखेगा उसको बड़ा फ्री और लाइट महसूस करना चाहिए, आज कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, कुछ बनाना नहीं, आराम से फ्री, साल में एक दिन किचन बंद, मुंह भी बंद पीने के लिए खाने के लिए, पेट भी बंद, पूरा शटडाउन एक दिन बस, है ना। तो बड़ा फ्री और लाइट होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत चिंतित होना चाहिए। चिंतित की क्या बात है, वाई टू वरी, भगवान ऐसा कोई अत्याचार थोड़ी करेंगे, भगवान ने बोला रख लो तो रख लेते हैं, क्या हो गया, और मिलेगा क्या, बहुत ज्यादा इसके लाभ मिलते हैं। तो इसलिए बिल्कुल हम लोग जय श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ सुभद्रा मैया की जय। भक्ति के पथ पे, साधना भक्ति के पथ पे कुछ विधि है, कुछ निषेध है, कुछ डूज है, कुछ डोंट्स है। अगर व्यक्ति सीधा डोंट्स पे ही ध्यान देता रहेगा तो उसका उत्साह बनेगा कि कम होगा, कम होगा, सारा दिन यही सोचता रहूँ पानी नहीं पीना, पानी नहीं पीना, पानी नहीं पीना, प्यास कम लगेगी, ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और डूज पे ध्यान देंगे तो अपने आप डोंट्स की तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। जैसे कि बहुत फेमस कथा है हमारे आते हैं शास्त्रों में, डोंट्स पे ध्यान देते हैं तो क्या होता है, जैसे कि बंदरों की सभा थी, उन्होंने सोचा ये मानव जाति बहुत मजाक उड़ाती है हमारा, है ना, जहाँ किसी को गाली दे रहे हो बंदर कह के बोला वो बंदर, तो बोलते हैं तो बहुत हद हो गई, है ना, तो हम भी दिखाएंगे हम भी तपस्या कर सकते हैं। तो क्या सोचा उन्होंने, एकादशी रखेंगे, है ना, तो एकादशी रखी उन्होंने, बोले क्या है हम नहीं रख सकते क्या, हम भी प्राइमेट्स हैं, हमारे भी हाथ है, अंगूठा है, हम तो करेंगे, जरूर करेंगे। सब बैठ गए और फिर एक सरदार भी था, बोले कोई बात नहीं, सब रखेंगे एकादशी, सब इकट्ठे एसोसिएशन में रहेंगे, हो जाएगा। तो एसोसिएशन में रह रहे थे, तभी काफ़ी देर चुप रहे, अब वही मेडिटेट कर रहे थे, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। तो एक बंदा था मंत्री, कान में जाके बोला सरदार के, देखो ऐसा है, अच्छी बात है, काशी तो रख ही लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कल तक बहुत बुरी हालत हो जाएगी, जो मैं देख रहा हूँ ना, सिम्टम नज़र आ रहे हैं, कल तक बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, पेड़ पे फल लटक रहे हैं, फल लेके रख लेते हैं, खाएंगे नहीं, लेके रख लेते हैं, एकादशी तो रखनी रखनी है। तो इसने सोचा, बड़ा बुद्धिमान है, भविष्य के बारे में सोच रहा है, बहुत कम लोग होते हैं जो आगे की सोचते हैं। तो बोले जाओ तोड़ लो, सबको आदेश दिया, देखो खाना नहीं है, तोड़ के रख लेना। सब बंदे बड़े खुश हो, कितना ध्यान रखते हैं सरदार हमारे, है ना, सबने तोड़ा, रख लिया अपने पास, फिर बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, और वीकनेस बढ़ रही थी। वो फिर दोबारा गया, बॉस सिचुएशन बड़ी ख़राब हो रही है, मुझे लग नहीं रहा कि कल इतनी भी हिम्मत होगी कि यहाँ तक भी ला पाएंगे, बहुत कम चांसेस हैं। सरदार ने भी अपने हाथों करके देखा, कमजोरी तो लग रही है, बोला चलो ऐसा है, देखो सबके भले के लिए है, यहाँ तक लाना है, खाना नहीं, खाना नहीं, एकादशी तो है, खाना तो है ही नहीं, आ गए यहाँ तक। फिर थोड़ा और दिन बीता गया, वो फिर गया, अरे मुंह भी नहीं खुलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इतनी कमजोरी आ जाएगी। तो बोला ठीक है, मुझे भी महसूस हो रहा है। तो कहाँ, यहाँ तक, चबाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं चबाना। हुआ क्या, मुंह के पास ले गए तो चबाना ही पड़ा, और व्रत वही टूट गया। तो अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो फेलियर निश्चित है, यही सोचते रहेंगे, पानी नहीं पीना, कितना समय हो गया, 5:22 कब बजेंगे, 5:22 कब होगा, याद है ना कल को सबका टाइम 5:22 देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से क्या होता है, व्रत टूट जाएगा, असफलता ही मिलेंगे। इसके कंट्रास्ट में हम देखते हैं एक दूसरे वानरों का भी समूह था रामायण में। भगवान राम जब सुग्रीव से मिले और ये निर्धारित हुआ कि सीता मैया को खोज के निकालना है, तो सुग्रीव ने 4 पार्टीज बना दी वानरों की और चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा के लीडर थे अंगद, अंगद की पार्टी में जामवान, हनुमान और बहुत अच्छे अच्छे वानर सब गए और खूब ढूंढा सीता मैया को। लगभग 1 महीना हो गया और वो ऐसे स्थान में गए, कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, उनकी ऐसी हालत हो गई कि अभी मरे, एकदम थक के चूर हो गए, भूखे प्यासे थके हुए, अभी जस्ट मरने ही वाले हैं। जब ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हर कोई अपने मिशन से डेविएट होना शुरू हो जाता है। तो लीडर तो फिर भी कमिटेड थे, जामवान, अंगद और हनुमान, लेकिन जो लोअर रैंक्स के वानर थे आपस में बातचीत करने लगे, खुश खुश करने लगे, क्या जरूरत थी यार, एक स्त्री के लिए हम सबको मार रहे हैं, ये कहाँ की इंसाफी है, एक स्त्री तो है उसके लिए इतना कुछ क्या है, हम तो मर जाएंगे ऐसे। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी लीडर के सामने जाके बोले, और लीडर्स को भी महसूस तो हो रहा था लेकिन उन्होंने ये मिशन गिव अप नहीं किया। तो जब ऐसे वो सोच ही रहे थे तभी जामवन ने देखा कि एक गुफा से एक पक्षी निकला, बड़े हैरानी से उनकी आंखों में चमक आ गई, पक्षी निकला ये छोटी बात नहीं थी, मुख्य बात क्या थी, उस पक्षी के जो पंख थे वो भीगे हुए थे और पानी नीचे टपक रहा था, बोले इसका मतलब यहाँ कोई आसपास पानी है। तो सब वो गुफा दिखाई दी, सब लोग बड़े उत्साह से वानर भाग के गए उस गुफा के अंदर। गुफा के अंदर गए तो बड़ा अंधेरा और बहुत ही गहरी गुफा, तो बेचारे और परेशान हो गए, चलते जा रहे हैं, चलते आ रहे हैं, तभी सामने गए तो उनको नजर आता है एक पानी का तालाब, बोले हाँ यहाँ पानी है। लेकिन वहाँ देखते हैं एक उसके तट पे बैठी है एक तेजस्वनी माता जी, स्त्री बैठी है जो कि तपस्या में है। तो उसने देखा वानरों को और उसने अपने योग शक्ति से एक सुनहरी मेज टेबल प्रस्तुत कर दी सामने, और कुछ ही क्षण में तरह तरह के सुंदर फल फ्रूट पेय पदार्थ खाद्य पदार्थ वहाँ पे आ गए। सब वानर के क्या हो रहा है, और उस स्त्री ने कहा मेरा नाम है स्वयं प्रभा, खाइए इसको। सब वानर टूट पड़े और इतना खाया यहाँ तक भर गए, और अचानक क्या देखते हैं, सब कुछ गायब हो गया और दोबारा समुद्र के तट पे बालू पे। समझ नहीं आया ये सब क्या हुआ, भूख मिट गई, प्यास मिट गई, सब क्या था, और दोबारा समुद्र के तट पे आ गए। अब फिर उन्होंने खोज शुरू की, अब जो इतना खाया था अब दोबारा से प्यास लगने लगेगी, अब तो बहुत बुरी हालत हो गई। और अब उन्होंने हृदय से भगवान राम को पुकारा और प्रार्थना की, जय श्री राम। और ऐसे भगवान को पुकारा और परेशान हो रहे थे, अब तो अंगद की भी हिम्मत टूट गई। अंगद ने कहा, एक महीना हो गया हमें सीता मैया कोई खबर नहीं आई, इससे अच्छा हम प्राण त्याग दें, खाली हाथ वापिस जाने से क्या फ़ायदा। ऐसे परेशान हो रहे थे, भगवान को पुकार रहे थे, तभी उनके सामने जोर से आवाज आई, कील कील कील, देखा तू पर एक बहुत बड़ा गिद्ध। अब अंगद ने कहा, हमारी मृत्यु का समय आ गया है, अब एक गिद्ध आ गया हमें खाने के लिए। और अंगद ने हनुमान से कहा, आपको एक गिद्ध जटायु की तरह नहीं लगता? जटायु ने तो सीता मैया के लिए अपने प्राण त्याग दिए, और जटायु का अंतिम संस्कार तो स्वयं भगवान राम ने किया, ये हमें यहाँ खा जाएगा, भगवान राम तो यहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे कह ही रहे थे, तभी अंगद ने देखा कि सारे छोटे छोटे वानर डर के इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि वो गिद्ध नीचे आ रहा था, और नीचे आते आते एकदम अंगद के सामने आ गया। और अंगद ने देखा इसकी आंखों में बहुत चिंता और बहुत शोक है, कोई इसके गलत इंटेंशन नहीं है। तो उस गिद्ध ने कहा, क्या तुम जटायु को जानते हो? क्या जटायु ने प्राण त्याग दिए हैं? जटायु तो मेरा छोटा भाई था, मैं उसका बड़ा भाई संपत्ति हूँ, बहुत साल पहले हम बिछड़ गए थे, क्या हो गया जटायु को? क्या सीता को रावण डे गया, रावण ने उसका वध कर दिया? तो जटायु ने सब बता दिया कि मैंने ले जाते हुए देखा है रावण को, सीता मैया को लंका में, जो कि समुद्र पार 100 योजन का समुद्र उसके पार, सीता लंका में है। और उसने कहा कि मेरे ये पंख जल गए थे इसलिए मैं उड़ान नहीं लगा सकता, लेकिन एक संत ने मुझे बताया था कि जब सीता मैया का रहस्य आप वानरों की सेना को बताएंगे तो तुम्हारे पंख वापस आ जाएंगे। तो इस ढंग से उस समय वो जो वानर पूर्ण रूप से हताश हो गए थे, भूखे थे, प्यासे थे, क्या किया था उन्होंने? भगवान राम को याद किया था, उनसे प्रार्थना की थी, और तभी संपत्ति वहाँ पर आए और उन्होंने सीता मैया का वहाँ पर उनको सुराग दिया, और उन्होंने दोबारा से उनको हृदय में आशा जागृत हुई। तो जिस भी परिस्थिति में हो हम, ये जो हम तपस्या कर रहे हैं आज, ये किसके लिए है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ब्रह्म नैवेद्य पुराण में बहुत सुंदर श्लोक आता है, नाम संकीर्तनम विष्णु क्षुत तृत्त प्रपिदितादिशु करोति सततम विप्रास तस्य प्रीतो ही अधोक्षजा। इसका अर्थ है, वो ब्राह्मण जो परम पुरुषोत्तम भगवान जो कि अधोक्षज है, भौतिक इंद्रियों से परे है, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उस व्यक्ति से जो कि भूख प्यास और बहुत सी समस्याओं के होते हुए भी निरंतर हरि नाम का जप करता रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूख है, प्यास है, बहुत समस्याएं हैं, इसके बीच में भी क्या कर रहे हैं? हरि नाम का जप कर रहे हैं, उससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो बहुत सुनहरी अवसर है हमारे पास भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अगर इस दिन हम समझ लीजिए खाली ये देखें, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, अपने रूम में जाएं, एसी ऑन कर दें और सो जाएं आराम से, फिर उठें सो जाएं, किसी ढंग से टाइम पास कर लें, उसका कुछ लाभ होगा? थोड़ा सा लाभ हो सकता है, कुछ सुकृति मिल जाए कि निचला एकादशी के दिन कुछ खाया पिया नहीं, ठीक है कुछ लाभ हो जाएगा, लेकिन असली लाभ क्या होगा कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए हरि नाम लें। नारद मुनि जी क्या कहते हैं, आराधे तो यदि हरि तपसो तथा किम, ना आराधे तो यदि हरि तपसा तथा किम। अगर आपने भगवान की आराधना कर ली, वो तो सभी तपस्या का फल है, फिर तपस्या का क्या लाभ? और अगर आपने भगवान की आराधना नहीं की तो ऐसी तपस्या तो बेकार की है, उसका क्या लाभ? तो दोनों ही स्थिति में तपस्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? उस तपस्या के पीछे भाव क्या है। शरीर की तपस्या हम कर रहे हैं, वाणी की तपस्या भी कर रहे हैं, लेकिन शरीर और वाणी की तपस्या के साथ अगर मन की तपस्या नहीं है तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। मन की तपस्या क्या है, भगवान गीता में बताते हैं, मना प्रसादात सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इतिर तपो मानस उच्यते संतोष सरलता गंभीरता आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो भाव संशुद्धि, भाव को शुद्ध करना है, ये मन की तपस्या है, और ऐसी हालत में भी संतोष बनाए रखना। निश्चित रूप से अभी तो खाली 9 भी नहीं बजे, थोड़ा सा फ्रेशनेस है, जैसे जैसे गर्मी आगे बढ़ेगी हमारी हिम्मत थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू होगी, लेकिन अगर हम साथ साथ में हरिनाम लेते रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे और ऐसी हालत में भी संतोष रखेंगे, तो ये मन की तपस्या साथ में करना बहुत जरूरी है। गिव अप नहीं करना। एक चीज याद रखना, निर्जल है निर्जन नहीं। क्या समझे? नहीं समझे? निर्जल है निर्जन नहीं, बोलिए। हाँ, अगर निर्जन है तो निर्जल नहीं। अगर निर्जल करना है तो निर्जन नहीं रहना, अकेले नहीं रहना, और अगर अकेले हैं निर्जन है तो फिर निर्जल भूल जाओ, फिर नहीं होगी। समझ गए? जैसे ही अकेले होंगे हमको वातावरण में बड़े बड़े बुरे लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। सारी तरफ लगेगा आसमान काला हो रहा है, बिजली कड़क रही है, उल्लू रो रहे हैं, सियार जोर जोर से चिल्ला रहा है, बाई हाथ फड़क रही है, बाई भुजा आंख फड़क रही है, शरीर कंपन हो रहा है, तारे नीचे गिर रहे हैं, अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, ये सब किस लिए कि मैंने पानी नहीं पिया बस। जैसे ही निर्जन हो गए ये सब लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाएंगे कि बहुत हो गया, अभी गिरा अभी मरा बस, ऐसा लगेगा। लेकिन जैसे ही भक्तों के संग में आएंगे, आज के दिन हमने एक तपस्या करनी है, उत्साहित रहना है और उत्साहित करना है। क्या क्या? यही तो उत्साह की परीक्षा है, उत्साहित रहना है, उत्साहित करना है। कोई बेचारा ढीला पड़ रहा हो, हरी बोल हरी बोल, इसको देखो उत्साह करिए, तो निश्चित रूप से हमें उत्साह आएगा। और ये भाव बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। इतनी हमने तपस्या कर ली लेकिन भगवान का स्मरण नहीं किया, ये तपस्या भगवान को समर्पित कर रहे हैं। हमारी तपस्या राधा रतन कमलन की फीस्ट है ना। आवर ऑस्टेरिटी इज अ फीस्ट फॉर कृष्ण बलराम। आप बोलेंगे भगवान बड़े सेडिस्टिक हैं, हमें भूखे पैसे रखते हैं और खुद फीस्ट खाते हैं। भगवान फीस्ट क्या कर रहे हैं? हमारे भाव की फीस्ट ले रहे हैं। भगवान रिलिश करते हैं, वाह ये भक्त कितना सिंसियर है, मुझे प्रसन्न करने के लिए आज इसने पानी भी नहीं पिया, 24 घंटे हरि कथा में एब्जॉर्ब्ड, वाह। तो भगवान इस भाव का भोग करते हैं, है ना। तो भोक्ता राम यज्ञ तपस्या, जो उस तपस्या के पीछे, उस सेक्रीफाइस के पीछे जो हमारी भावना है उसको भगवान भोग करते हैं। भगवान को इस भौतिक जगत में भोगने की क्या जरूरत है? भौतिक जगत प्रकृति तो निकृष्ट प्रकृति है। तो भाव हमारी तपस्या के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज ईरान में गए, और वहाँ ईरान में वो एक मुस्लिम से मिले, और वहाँ उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया एक मौलवी के अंतर्गत, बहुत बड़ा स्कॉलर था वो। और महाराज ने उनसे पूछा कि आप ये रमजान क्यों रखते हैं, रोजे रखते हैं ना एक महीने के लिए, क्यों रखते हैं? तो उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई, बोलते हैं वैसे तो जब कोई व्यक्ति किसी भूखे को देखता है उसको कुछ अन्नदान दिया है ना, हमारे यहाँ पे फूड फॉर लाइफ है, दान दिया आपको टैक्स रिबेट भी मिल जाएगा, है ना, ठीक है ये भी अच्छा है, लेकिन हृदय को इतना संतुष्ट नहीं करेगा। आप बढ़िया फर्स्ट क्लास 5-स्टार होटल में खा रहे हैं, कुछ आपने खिचड़ी के लिए दान दे दिया, चलो ये भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे ऊपर की बात यह है उस भूखे व्यक्ति की हृदय की भावना को समझना, उसके साथ एम्पेथाइज करना, कैसा महसूस होता है जब व्यक्ति भूखा और प्यासा होता है। जब वो व्यक्ति खुद महसूस करता है कि क्या होती है भूख और प्यास, तब वो किसी भूखे प्यासे को देखता है तो बड़े प्रेमवश उसको वो देता है, इससे हृदय में संतुष्टि मिलती है। दूसरे की समस्या को कम करने के लिए, उसको समझने के लिए जो व्यक्ति खुद तकलीफ उठाता है, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हमें ये जो निर्जल एकादशी रख रहे हैं ये बहुत सुंदर अवसर है अपने हृदय में करुणा का विकास करने के लिए। भगवान हमें मौका दे रहे हैं, जब आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा तो क्या आप मेरा नाम ले पाएंगे? कब मौका आएगा जब शरीर हमारा साथ नहीं देगा? अंतिम समय में कोई शरीर के अंग सब इधर उधर भाग रहे होंगे, मन भी स्थिर नहीं होगा, उस समय हम भगवान का नाम ले पाएंगे। ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेशन है ना। अगर ऐसे में भी हम पूरी रात जाग के भगवान का नाम लेते रहे, चलो कुछ तो प्रैक्टिस कर ले, है ना। प्रतिदिन हम गाते हैं सुबह चतुर्वेदा भगवत प्रसादो स्वाद्वान तृप्तान हरिभक्ति संज्ञा कृत्व तृप्तिम भजता सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। चार प्रकार के व्यंजन कौन कौन से होते हैं? चबाए जाने वाले, चूसने वाले, चाटने वाले और निगलने वाले। ये भगवान को अर्पित करते हैं और जब सब भक्त लोग आपस में बैठ कर इसको सेवन करते हैं तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। आप बोलेंगे आज के दिन ऐसी बातें आप क्यों कर रहे हैं, है ना। तो प्रसाद भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एडिबल, एक होता है ऑडिबल, एक खाने वाला एक सुनने वाला। जिस प्रकार से खाने वाले चार प्रकार के हैं, सुनने वाले भी चार प्रकार के हैं, नाम रूप गुण और लीला। तो आज के दिन हम भक्त लोग मिलकर आपस में प्रसाद पाएंगे। कौन सा प्रसाद पाएंगे? हरि नाम, हरि गुण, हरि लीला, हरि कथा, ठीक है ना? नहीं क्या है? जैसे कि आपको मालूम होगा, एक बार गोरखदास बाबा जी ने सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस था, गोरकिशोर दास बाबा जी साक्षात वैराग्य मूर्ति क्या खाते थे? यमुना की तट से मिट्टी उठा के पानी डाल के उसको खा लेते थे, तो उसको खा लेते थे। और जब सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस आया तो उन्होंने वैष्णव समाज में खबर पहुंचा दी, मेरी तरफ से सुपर फीस्ट, चारों दिशाओं से वैष्णव गण आ रहे हैं, कमाल है, गोरकिशोर दास बाबा जी साक्षात वैराग्य मूर्ति सुपर फीस्ट देंगे, कोई बहुत स्पेशल होगी। सब इकट्ठे हो गए, बोले क्या फीस्ट है? मारे आज फीस्ट है हरि नाम की, सब बैठ के 128 माला करेंगे। इसी ढंग से आज हमारी फीस्ट होगी हरि नाम की, सब लोग संकल्प ले सकते हैं कम से कम 64 माला, कम से कम। पिछले निर्जलाकाशी में कई भक्तों ने 108 माला की थी, कई लोग प्रयास कर दे आज हरिदास ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करेंगे 192 माला के, कर सकते हैं आप लोग। पूरी रात आपके पास है, पूरा दिन पूरी रात कुछ नहीं करना, बस भगवान के नाम का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बारी शिला प्रभुपाद जब अपने अंत्य लीला में थे तो उनकी सेवा कर रहे थे उपेंद्र प्रभु और भक्ति चारु स्वामी महाराज, और दोनों बहुत मेहनत करके 3-3 घंटे लगाते थे रसोई में, प्रभुपाद जी के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाते थे। ये प्रभुपाद के सामने लाते थे, प्रभुपाद कहते थे ले जाओ नहीं खाना, और वो वापस ले आते थे तो सारे भक्त टूट पड़ते थे, ये रसगुल्ला मुझे दो, कचौड़ी मुझे दो, समोसा मुझे दो। प्रभुपाद ने देखा ये ठीक नहीं है, उन्होंने उपेंद्र को बुलाया, ऐसा किया प्रसाद को ऐसे नहीं लेते, सब मिक्स कर दिया करो, सब मिक्स कर दिया, फिर भक्तों को बांटने लगे। तो एक बारी उपेंद्र और भक्ति चारु स्वामी महाराज गए, वो निर्जला काशी के अगले दिन था, और जब इन्होंने निर्जला काशी रखी उपेंद्र बाबू ने तो बोले बुरी हालत हो गई, वृंदावन में तो बहुत गर्मी होती है, उनको लग रहा था अभी तोड़ू ना तोड़ू, बड़ी मुश्किल से उन्होंने व्रत रख पाए और अगले दिन बहुत थके हुए थे, और फिर भी प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने प्रसाद बनाया और ले गए। फिर से प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद ने फिर बोल दिया नहीं नहीं लेंगे। तो उपेंद्र बाबू रो पड़े, बोले प्रभुपाद आपने एक महीने से कुछ नहीं पाया और हम तो बहुत युवा हैं, हमने खाली एक दिन कुछ नहीं पाया था, हमें लग रहा था कि हम तो कोलैप्स हो जाएंगे, और आप एक महीने से आपने कुछ भी नहीं लिया, ये कैसे? तो प्रभुपाद ने बोला आई एम अ लिविंग प्रूफ टू शो द सोल डज नॉट डिपेंड ऑन बॉडी फॉर सस्टेनेंस, बॉडी डिपेंड्स ऑन सोल फॉर सस्टेनेंस। आत्मा, प्रभुपाद ने बोला मैं जीवित उदाहरण हूं कि आत्मा शरीर पर निर्भर नहीं रहती अपने अस्तित्व के लिए, बल्कि शरीर आत्मा पर निर्भर है अपने अस्तित्व के लिए। तो कुछ नहीं होगा, जो संतुष्टि है वो खाने पीने से नहीं आती, संतुष्टि जीवा से नहीं मिलती, संतुष्टि इंद्रियों से नहीं मिलती, त्वचा से नहीं मिलती। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है बद जीव को, वो समझता है संतुष्टि मतलब है कुछ अच्छा खाने को, अच्छा छूने को मिल जाए। संतुष्टि आती है हृदय से, आत्मा की संतुष्टि है, आत्मा सुप्रसिद्धति। जब आत्मा संतुष्ट होती है वो असली संतुष्टि है, और आत्मा संतुष्ट होती है हरि नाम से, हरि कुंड से, हरि लीला से। तो इसलिए ये सुपरफेस चार्ज हम लें और बड़े उत्साह से एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं। जैसे कि ये श्लोक बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये कथा आप समझ गए होंगे, रंती देव जी की है। रंती देव जी ने अपने परिवार के साथ मिलकर 48 दिन की फास्टिंग की, 48 दिन की निर्जला फास्टिंग, 48 दिन, आप सोचिए। और 48 दिन के उपवास के बाद उनके सामने वो राजा थे, बहुत सुंदर शुद्ध देसी घी और दूध से बनी हुई मिठाई और कुछ पेय पदार्थ आए। और 48 दिन की फास्टिंग के बाद क्या स्थिति होगी, रंती देव लेने ही लगे थे तभी वहाँ पर एक ब्राह्मण आ गए, बोले बहुत भूख लगी है। रंती देव ने बड़े प्रेम से जो मीठा था उसका आधा भाग उस ब्राह्मण को दे दिया। दोबारा जो पाने लगे तभी वहाँ पर एक शूद्र आ गए, बोले हे राजा मुझे बहुत भूख लगी है। रंती देव ने बिना कुंठित हुए जो बचा था उसका भी आधा उसको दे दिया। फिर पाने लगे तो एक व्यक्ति आ गया अपने कुत्तों के साथ, बोले राजा मैं भी भूखा हूं, मेरे कुत्ते भी भूखे हैं। तो रंती देव ने जो बचा हुआ था उस व्यक्ति को दे दिया, तुम भी खाओ और कुत्तों को भी खिलाओ। अब खाली बचा जल पीने को, पीने लगे जैसे ही तो एक चंडाल आ गया वहां पे और बहुत बुरी उसकी हालत थी, जैसे अभी मरने वाला है। बोले बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, कुछ पीने को दो। रंती देव का हृदय पिघल गया और उन्होंने उसको भी पीने को दे दिया। और जब ये सब किया तो रंती देव ने बहुत सुंदर प्रार्थना की। रंती देव ने प्रार्थना की, मैं ईश्वर से ना तो योग की अष्ट सिद्धियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ना जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष की कामना करता हूँ। मैं तो सारे जीवों के बीच निवास करके उनके लिए सारे कष्टों को भोगना चाहता हूँ, जिससे वे कष्ट से मुक्त हो सके। मैं सब जीवों के कष्ट को भोगना चाहता हूँ कि ये जीव कष्ट से मुक्त हो सके। आप कल्पना कीजिए, 48 दिन के उपवास के बाद कोई लेने आ रहा है, बुरा कोई घबराइए मत, कल सुबह 5:22 में हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, ये गारंटी भगवान हमारी परीक्षा नहीं लेंगे। तो क्या हुआ, ये सारे के सारे जो थे ब्राह्मण शूद्र, वो आदमी जो कुत्तों के साथ आया था चंडाल, ये सब देवता गण थे, ब्रह्मा जी शिव जी तभी उनके सामने प्रकट हो गए। और रंती देव ने ऐसा सेक्रीफाइस किया, इस सेक्रीफाइस से वो भगवान के बहुत ही निकट के पार्षद बने, गोपनीय सेवा में उनको लगे। और आगे जाके वर्णन आता है कि रंती देव की प्रजा ने भी उनका पालन किया तो वो भी भगवान के पार्षद बन गए। तो ये जो प्रिंसिपल्स रंती देव जी सिखा रहे हैं, जीवन के लिए संघर्ष करते हुए बेचारे चंडाल को, जान बचाने के लिए अपना जल देकर मैं सारी भूख प्यास थकान शरीर कंपन खिन्नता क्लेश संताप तथा मोह से मुक्त हो गया हूँ, यानी कि अपने कष्ट को ना देकर दूसरों के कष्ट को देखना। आज के दिन हम देखेंगे सभी लोग कष्ट में होंगे तो क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे का उत्साह बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे को हम हरि नाम के लिए उत्साहित कर सकते हैं, हरि कथा के लिए उत्साहित कर सकते हैं, आपस में बैठ के हम भागवतम की चर्चा कर सकते हैं, एकादशी के दिन भगवद गीता पढ़ सकते हैं, पूरी रात आप जागृत रहिए, मंदिर में भी प्रोग्राम होगा, भक्ति विशा का भी एक अलग से प्रोग्राम है, उसमें भाग लीजिए, अपने आप को उत्साहित रखिए और दूसरों को उत्साहित कीजिए। तो ये कुछ विचार थे और अब हम इस एकादशी का कुछ महात्म्य पढ़ सकते हैं। आप सब जानते हैं कि ये एकादशी को रखने के लिए इसका वर्णन आता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि भीष्म पितामह सॉरी क्षमा कीजिए भीमसेन जो थे उन्होंने व्यास देव जी से ये पूछा कि आप मेरा एक निवेदन सुनिए, मेरे सारे भाई माँ नकुल सहदेव द्रौपदी एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाते और विशेषकर युधिष्ठर तो मुझे यही बोलते हैं कि मुझे भी एकादशी के दिन उपवास रखना चाहिए, लेकिन मैं उनको ये बोलता हूं कि मुझे मालूम है शास्त्र में बताया गया है कि एकादशी के दिन उपवास रखना चाहिए, लेकिन आप मुझसे जो मर्जी दान करवा लीजिए, दान कर दूंगा मैं, भगवान की पूजा जितनी करा लिए कर लूंगा, लेकिन उपवास नहीं रखूंगा, संभव ही नहीं है, कुछ और बताओ करने को। तो भीमसेन से जब व्यास जी ने पूछा तो भीमसेन ने कहा, अगर आप ऊंचे के लोके में जाना चाहते हो और नर्क से बचना चाहते हो तो महीने में दो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। भीम ने बोला, ओ मुनिवर, ये तो मेरे लिए असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे अंदर आप जानते हो कितनी अग्नि जलती है, व्रिकोदर, और मैं खूब खाता हूँ और ये नहीं कर सकता। कोई ऐसा उपाय बताओ, शॉर्टकट बताओ कि साल में 24 एकादशी की जगह खाली एक एकादशी रखनी पड़े, एक को करते ही सारा काम हो जाए। इसके बारे में कुछ बता सकते हो तो बताओ। आपने तो सारे शास्त्रों का संकलन किया, कुछ पता होगा, कुछ छुपा हुआ रहस्य, कुछ ऐसा कोडवर्ड, ऐसी कोई चीज वो बताओ जिसे काम हो जाए। व्यासदेव जी ने फिर भी कोशिश की थोड़ा और पुश करने की। व्यासदेव ने बोला, देखो कली काल में कोई भी नियम पालन नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम सारे के सारे पुराणों का मैं आपको सार बता रहा हूँ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखो, नरक जाने से बच जाओगे। व्यासदेव जी भी आसानी से नहीं बता रहे थे। अब व्यासदेव जी के शब्द सुने तो इतने विशाल काय भीमसेन कि जब तक कोई एकादशी नहीं रखेगा वो नरक जाने से नहीं बच सकता, इतने विशाल काय बहादुर भीमसेन पत्ते की तरह कांपने लगे। अरे मैं नरक में चला जाऊंगा, मैं तो एकादशी रख नहीं सकता। तो जब ऐसे कांपने लगे तब थोड़े विनम्र होकर उन्होंने व्यासदेव से प्रार्थना की कि हे पितामह, मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूँ महीने में दो एकादशी रखने के लिए, तो कृपया करके मुझे ऐसा कोई संकल्प बताइए जिसमें सारे गुण हों और जिसको रखते ही मुझे सारे उपवासों का फल मिल जाए। तब भीमसेन की स्थिति को देखकर व्यासदेव जी को करुणा हुई, उन्होंने बोला ठीक है, मई और जून के महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आएगी वो निर्जल एकादशी है, उस दिन तुम्हें पानी भी नहीं पीना, और उस दिन अगर किसी को आचमन भी करना है तो उसको केवल एक बूंद, कितनी बूंद की, उसमें सरसों का एक दाना आ सके बस, उससे ज़्यादा पानी पिया तो ऐसा लगेगा जैसे उसने मदिरा पान किया है। और इस दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए अन्यथा तुम्हारा व्रत टूट जाएगा। और अगले दिन पूरा एकादशी का व्रत रखने के बाद द्वादशी को क्या करना चाहिए? बोला द्वादशी के दिन स्नान करके ब्राह्मणों को सोने का दान देना चाहिए, सोने का नहीं, सोने का, वो तो सो जाएंगे वैसे, स्वर्ण का दान देना चाहिए, और ब्राह्मणों को खूब पानी पिलाना चाहिए, और उसके बाद खुद ब्राह्मणों के साथ बैठ के उत्साहपूर्वक खाना चाहिए। और भीमसेन से कहा, देखो इस एकादशी से बड़े बहुत इसके लाभ हैं। क्या लाभ हैं? कि एक एकादशी का पालन करके साल में बाकी जो 23 एकादशी हैं उसका फल मिल जाएगा। अरे वाह, क्या शॉर्टकट, एक एकादशी का पालन करके सारी एकादशियों का फल। वैसे हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा होता है कि ये पांडव एकादशी को निर्जला रखे, अगर किसी की एकादशी बीच में टूट गई है ना। लेकिन आज के इस कलयुग में ये कहना कि हम एकादशी के दिन जो खाते हैं उसमें एकादशी नहीं टूटी होगी, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ में इतना प्रदूषण है, इतना कंटामिनेशन है। बहुत साल पहले एक माता जी हमें मिली थी ऋषभ कैलाश मंदिर में, डिटी किचन में सेवा करती थी, तो वो एकादशी निर्जला रखती थी, फिर भी सेवा करती थी डिटी किचन में आके। तो उनसे पूछा, आप कैसे निर्जला रख लेते? उन्होंने बोला, कलयुग में खाली दो ही चीज़ें शुद्ध हैं, एक हरि नाम, दूसरी निर्जला एकादशी। एकादशी के दिन हम जो खाते हैं, एकादशी पिज़्ज़ा, एकादशी पास्ता, एकादशी टिक्की, एकादशी पकौड़ा, वो ठीक है, हम सब खाते हैं, लेकिन अब उसमें गारंटी नहीं है कि कुछ, क्योंकि आजकल कहाँ से क्या आटा आ रहा है कुछ नहीं पता। इसलिए सेफ्टी ये है कि जिनका स्वास्थ्य परमिशन देता है निर्जला रखने का प्रयास करें। एक एकादशी रखते ही सारी एकादशियों का फल, कुछ अगर कहीं में कुछ डिस्क्रिपेंसी हुई, कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो उसका भी फल आपको, वो उसका गलत फल नहीं मिलेगा, और ये निर्जला एकादशी रखने से 24 एकादशी का फल मिल जाएगा। एक बारी भगवान विष्णु ने, जो कि अपने हाथ में शंख चक्र गदा पद्म रखते हैं, उन्होंने बताया कि अगर कोई सब धर्मान परित्याज, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण लेता है और इस निर्जला एकादशी का पालन करता है जो कि मुझे बहुत प्रिय है, तो निश्चित रूप से उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। और कोई भी व्यक्ति कोई दान करके या तरह तरह के कर्मकांड करके वो फल प्राप्त नहीं कर सकता जो कि ये निर्जला एकादशी से प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि और मैं इसके बारे में क्या गुणा करूं, ये जो निर्जला एकादशी का जो व्रत रखेगा उसके पास यमदूत कभी नहीं आ सकते, यमदूत डरते हैं उसके पास आने के लिए, और उसके पास हमेशा जब भी आएंगे तो विष्णु दूत आएंगे। और अगर कोई पानी और गायों को दान में देता है इस काशी का पालन करने के बाद, वो भी सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद बताया गया इस काशी को पालन करने से अगर किसी के पाप इतने ज्यादा हैं कि सुमेरु पर्वत से भी ज्यादा पाप हैं, वो भी एक काशी को रखने से जल के राख हो जाएंगे। और इस काशी के दिन जितने भी अच्छे कार्य हैं, जैसे कि तीर्थ स्थानों में स्नान करना, दान देना, भगवान के नामों का जप करना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, उसका लाभ अक्षय रहेगा, एटर्नल क्रेडिट पे रहेगा। और जो इस एकादशी की महिमा सुनेगा भक्ति से, वो वैकुंठ धाम में वापस जाएगा। इतने लाभ, एक दिन क्या नहीं करना, कुछ खाना पीना नहीं है, नहीं करेंगे क्या हो गया, इतने वर्षों से इतने जीवनों से इतना कुछ खाया है पिया है, एक दिन नहीं किया तो क्या हो गया। लेकिन मुख्य उद्देश्य ये नहीं है, मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान का ज्यादा से ज्यादा हम कीर्तन करें, स्मरण करें। जो भगवान के शुद्ध भक्त थे जैसे कि षट गोस्वामी, वो मुश्किल से 90 मिनट विश्राम करते थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी 2 दिन में कोई 150 ग्राम छाछ पीते थे। 90 मिनट विश्राम करने के बाद भी बड़े पछताते थे, टाइम वेस्ट कर दिया। तो वो क्योंकि भगवान के नाम में इतना एब्जॉर्ब रहते थे कि वो खाना पीना भूल जाते थे। हमारा केस थोड़ा उल्टा है, हमने खाना पीना नहीं है इसलिए हमें हरि नाम में एब्जॉर्ब होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ध्यान वहां जाएगा। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमारी भी स्थिति आ जाएगी कि हम भगवान के नाम में, भगवान की कथा में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और हमारे शरीर की आवश्यकताएं कम हो जाएंगी। तो एकादशी का मतलब है अपने शरीर की आवश्यकताओं पर ध्यान ना देकर अपनी आत्मा को तृप्त करें। जल में क्या है, भगवान गीता में कहते हैं रसो हम सुकौंतेय, जल पीकर हमें क्या मिलता है, कुछ रस का आस्वादन करते हैं, वो रस क्या है, कृष्ण है। तो कृष्ण का नाम सीधा ही लेंगे तो सीधा ही रस प्राप्त होगा। तो डायरेक्टली जल के सार को हम प्राप्त कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के नाम का पान करें, है ना, कितने भजन हम सुनते हैं, कौन सा है, कृष्ण नाम सुधा करो पान, है ना। तो कृष्ण नाम के सुधा का हम पान करें। गोपियां भी कहते हैं तव कथा मृतमृतम तप्त जीवनम, जो गर्मी लगेगी उसकी ठंडक कहाँ से मिलेगी, भगवान की कथा से। तो इसलिए आज के दिन हम प्रार्थना करें, हम भगवान से श्रील प्रभुपाद से ये शक्ति मांगे कि आज 24 घंटे हम आपके नाम रूप गुण लीला का प्रसाद स्वीकार करते रहे, और इसके लिए हमारे शरीर और मन को शक्ति दे। ये प्रार्थना ना करें कि बस प्रभु जी किसी ढंग से निर्जला रख लें, वो निर्जला तो बाई प्रोडक्ट है, हो ही जाएगा अगर हम डूज पे ध्यान देंगे, डोंट्स पे नहीं। डोंट्स भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो मुख्य नहीं है, प्राइमरी क्या है, क्या करना है, सेकेंडरी बाद में। अगर पहले खेल यही फोकस है, नहीं कुछ नहीं खाना कुछ नहीं पीना, तो माइंड पे बहुत बड़ा बोझा पड़ेगा और उसमें हम क्लीन बोल्ड हो सकते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव रहेंगे कि हाँ आज पूरा समय मिला है, निश्चिंत होकर कुछ नहीं करना, बस ज़्यादा से ज़्यादा जप करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, भक्तों को उत्साहित करेंगे, खुद उत्साहित रहेंगे और पूरी रात जागरण करेंगे और उत्साह में रहेंगे, तो अपने आप समय नहीं मिलेगा खाने और पीने का। रसोई बंद, सब कुछ बंद, केवल मंदिर, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम हर अच्छे ढंग से भगवान की प्रसन्नता के लिए इस निर्जला एकादशी को रख सकें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। एनी क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न है क्या?
हरे कृष्णा, थैंक यू ब्रो जी, काफी मोटिवेटिंग लेक्चर था। मुझे मेरा प्रश्न ये था कि क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है फास्टिंग वाला जो एंजॉयमेंट है वो होता है?
वाह, कितनी अच्छी भावना है प्रभु जी की। प्रभु जी की भावना है कि फास्टिंग में इतना एंजॉयमेंट है कि जब भगवान के धाम भी जाएंगे तो वहाँ फास्टिंग रखना चाहते हैं। तो आपके पास फ्री भी ले रख सकते हैं वहाँ फास्टिंग। लेकिन वहाँ इंजंक्शन ये कि रखनी ही है। तो इतना दिन इतना कहीं पढ़ा नहीं हमने कि फास्टिंग रख रहे थे, है पढ़ा कहीं किसी ने? पढ़ा तो नहीं। और कुछ कात्या? यस मंच।
हरे कृष्ण, थैंक यू। मुझे जैसे अभी एक कथा आई थी, वो एक प्रसंग था हनुमान जी और सेना का, तो अचानक वो उनके सामने गुफा कहाँ से आ गई थी और फिर वो एकदम समुद्र तट पर कैसे पहुँच गए थे उसमें?
ये कुछ लीला थी भगवान की। भगवान ने ऐसे कुछ अरेंजमेंट किए कि उनकी जो भूख प्यास थी मिटा दी और फिर दोबारा से उनको वहाँ पे पहुँचा दिया। उस गुफा के बीच में से निकले वो और उनको मिला। मैं इतना ही जानता हूँ उसके बारे में, ज़्यादा नहीं जानता। किसी और को कोई टिप्पणी दे सकता है इसके बारे में? इतना ही मैंने पढ़ा था। ये बताया गया है कि एकादशी का व्रत तपस्या के लिए नहीं है, तो मैं इसे पूरा कन्विंस नहीं था, इसलिए मैं सारी एकादशी बिना खाने से कथा केवल पानी में खाली पानी पीता हूँ। क्या मैं ठीक करता हूँ? हाँ, निश्चित रूप से। प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे हैं, न्यूजीलैंड से इनका प्रश्न है कि मैं हर एकादशी में कुछ खाता नहीं, केवल पानी पीता हूँ, लेकिन वहाँ के मुझे लोकल भक्त बोलते हैं कि एकादशी तपस्या के लिए नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तपस्या है, तपस्या केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। जितना हम खाना पीना कम रखेंगे एकादशी के दिन, उतना हम अपना ज़्यादा समय एनर्जी लगा पाएंगे भगवान के भजन में। तो क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो ईटिंग के बाद फिर स्लीपिंग, तो शरीर को भी फिर रेस्ट चाहिए। जहाँ खाते हैं उसको पचाने के लिए शरीर को टाइम लगता है, तो टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। तो जितना कम खाएंगे पियेंगे उतनी शक्ति हम लगा सकते हैं भगवान की सेवा में।
हरे कृष्ण प्रजी। लाइक जैसे लोग कई बार जैसे पॉलिटिकल मोटिव से व्रत से रखते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं रखते, तो उनको भी क्या इसके अज्ञात स्वीकृति प्राप्त होगी?
पॉलिटिकल के लिए मोटिव्स के लिए फास्टिंग को बहुत कंडेम किया गया भगवद गीता में, उसको नहीं रखना चाहिए। कोई बाय चांस समझो उसने पॉलिटिकल मोटिव से फास्टिंग रखी, वो समझो आज का दिन है,
जैसे महाराष्ट्र बंद है,
हाँ आज का दिन हो गया बाय चांस, उसको नहीं पता था, उससे तो कोई अनशन ऐसे कोई हड़ताल किया कुछ किया, लेकिन आज के दिन पड़ गया तो हमको स्वीकृति मिल जाएगी। एकादशी इज वेरी स्पेशल डे, लेकिन अगले दिन ऐसे रख रहा है तो देन इज नो, बल्कि भगवान इसकी निंदा ही करते हैं, भगवान प्रसन्न नहीं होते।
और जो रोजा रखते हैं उनको भी इसका कुछ?
रोजा के तो विधान है इस्लाम में, तो उनको क्रेडिट मिलेगा। बताया ना, वो जो कुरान में बता रहे थे जो स्कॉलर थे कि रोजा रखने का मुख्य उद्देश्य है कि हृदय में करुणा को विकसित करना मुख्य और प्यासे लोगों के लिए। हर रिलीजन में फास्टिंग का प्रावधान है, क्रिश्चियनिटी में सब। यस अच्छा, राम रंजन पुर।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे को पूर्ण विश्वास कैसे हो कि हम जो तपस्या करते हैं कि उसके बदले जो हमारे को कृष्ण प्रेम मिलेगा, ताकि हमारा उत्साह और ज्यादा बढ़े?
प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए
थोड़ा चाहते हैं।
प्रत्यक्ष अवगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। हरि नाम का जप करना शुरू शुरू में तपस्या ही लगती है ना, तो क्यों कर रहे हैं प्रतिदिन? कोई डंडे तो नहीं मारता हमें? चार नियम का हम पालन करते हैं, क्यों करते हैं? अपने आप स्वेच्छा से कर रहे हैं ना, कुछ प्राप्त हो रहा है ना, नहीं हो रहा प्राप्त? प्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? कृष्ण प्रेम की ओर हमारा विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? प्रतिदिन हम माला करते हैं, चार नियमों का पालन करते हैं, तपस्या है। ये तपस्या करते हैं तो हम भक्ति में प्रसर हो रहे हैं, हम देख सकते हैं। तो इसमें और क्या चाहिए? और सबसे अच्छा है अगर उस तपस्या को भगवान को समर्पित करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो स्वयं भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं और आपको हृदय में प्रसन्नता आएगी। नहीं, क्यों पूछा आपने प्रश्न?
दृढ़ विश्वास चाहिए इसके लिए ना, मतलब पूर्ण विश्वास में बता कि मतलब कि कृष्ण प्रेम मिलेगा, और ज्यादा विश्वास हो तो हमारा उत्साह और ज्यादा बढ़ जाता है।
विश्वास कैसे पड़ेगा, क्या देखकर आपको विश्वास पड़ेगा?
जैसे प्रभु प्रैक्टिकल कोई चीज है, जैसे हम इस भौतिक संसार में देखते हैं कोई चीज, हम 100 रुपए की लेते हैं तो 110 रुपए की बेच देते हैं उसको, एक प्रैक्टिकल नजर आ रहा है कि 10 रुपए मेरे पास आए प्रैक्टिकली, तो इसमें थोड़ा सा ना
तो आप प्रैक्टिकल देखो ना, जो राम रंजन पहले क्या थे और अब क्या हैं, तो फर्क नजर नहीं आया उसमें, तो फिर अब आपको बेचेंगे पता नहीं कितने के मिलेंगे आप पहले आपकी वैल्यू क्या थी और आपकी वैल्यू क्या होगी भगवान की आंखों में देखें तो ऐसा है, जो भगवान संसार की चीजों को हम नाप सकते हैं, भक्ति को नापना इतना आसान नहीं है, भक्ति को हम महसूस कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना।
हरे कृष्ण प्रभु जी, तो हमने आपके लक्ष्य के बारे में एक सरसों के बूंद के बराबर पानी अगर लगा चाहते हैं इसका
अगर
जीभ को टर्न कर करके मैं सरसों के बूंद के बराबर जो आपने कहा कि पानी लेना चाहिए अगर बहुत जरूरी हो तो, वो ना लेकर के भी अगर हम मानसिक रूप से सोचें तो सलाइवा बनता है, लार्वा बनते रहता है और उसको हम ये स्वेलो कर सकते हैं, तो क्या इस पर भी कंट्रोल रखना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए कि सलाइवा ज़्यादा क्रिएट करूँ? और दूसरी बात की वो बूंद का रहस्य थोड़ा सा बता दीजिए, बूंद वाली बात कि सरसों के बूंद के बराबर पानी क्यों ले जबकि सलाइवा हमारा बनता ही बनता है और वो कई गुना ज्यादा बनता है अगर उसको देखा जाए तो ग्लास के आधा ग्लास के बराबर दिन में हो सकता है कि हो जाए।
ठीक है,
थैंक यू, हरे कृष्ण।
बहुत अच्छे, आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि जब प्यास लगे तो सरसों की बूंद वाला पानी पी लें, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला है कि जब आचमन करना पड़े, पुजारी को अच्छी तरह की सेवा के लिए जाना है
जी,
आचमन करना पड़ता है
मुंह में लेकर कहीं ना उसको आचमन, आचमन का मतलब मुंह में
आचमन उतना ही एक बूंद बस
जी जी जी,
दैट्स इट। वो भगवान की सेवा के लिए शुद्ध करना जरूरी है अपने आप को, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पानी पीना है तो स्नान करने जाए शॉवर में थोड़ा सा मुंह खोल दे तो प्रभुपाद कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ चीटिंग। तो फिर आज बार बार आचमन करने जाके भगवान के पास जाऊंगा, बार बार आज भगवान का बहुत स्मरण हो रहा है, बार बार सेवा करने जाऊंगा आचमन के।
अच्छा, एक और सवाल था प्रभु जी की, जिसको बर्दाश्त नहीं होता है तो वो रात में जैसे सूर्योदय से सूर्योदय तक हमारे फास्ट चलता है हिंदू धर्म में, तो सूर्योदय से पहले भी उठ कर करके कुछ खाया जा सकता है नहा धो करके ताकि वो सस्टेन रखे 24 घंटा वो नेक्स्ट उसको कर सकते हैं।
हाँ, तो जो बताया गया है इस पुस्तक में, एकादशी महात्म्य पुस्तक है, तो इसमें बताया गया है स्कंद पुराण और भविष्य पुराण और गरुण पुराण, इसमें बताया गया जो शुद्ध एकादशी है वो सूर्य उदय से 96 मिनट पहले शुरू होती है। जो सूर्योदय का समय होता है उससे 96 मिनट पहले शुद्ध एकादशी शुरू होती है, 96 मिनट्स पहले हम कुछ पी सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच।
ठीक है, ओके।
सब लोग जल का दान देते हैं, जो आज के दिन काफी जल अन्न का काफी दान देते हैं, उसका क्या?
पता नहीं, ये तो लोगों को खुद मालूम होगा, जिस दिन निजला एकादशी उस दिन जल का दान एक दिन थोड़ा जल्दी कर दिया, उन्हें कल करना चाहिए, है ना, वो कल भी पालन के समय है बेसिकली, क्योंकि जो ब्राह्मण होगा उसने पूरी निजल एकादशी रखी होगी और फिर उसको हम देखते हैं, भक्त लोग सब एक दूसरे को जल पिलाने का प्रयास करते हैं।
जैसे मैं प्रसादम वितरण करता हूँ, मेरा लंच का काम है, लंच सप्लाई है, तो आज के दिन मैं कैसे करूँ उसको, कैसे किस तरीके से?
वैसे काशी के दिन हमें अन्न ना वितरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पाप करने में सहयोग दे रहे हैं।
लेकिन वो मैं ये सोचता जैसे अगर मैं नहीं दूंगा तो वो कहीं ना कहीं से पाप खाएंगे, तो प्रसाद में
आप तो पाप के भागे नहीं बनेंगे ना।
अच्छा, इस तरह तो आज के दिन
सिद्धांत यही है कि एकादशी के दिन हमें किसी को भी अन्न का दान भी नहीं करना चाहिए। ओके, सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे उत्साह से हम लोग इकट्ठे मिलकर भगवान के चार प्रसाद कौन कौन से हैं, नाम रूप गुण लीला, बस इसमें हम आनंद में रहेंगे और कल सुबह फिर प्रसाद पाएंगे मुख के द्वारा और आज प्रसाद पाएंगे कान के द्वारा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, पांडव जी जिला एकादशी की, निताय गोर प्रेमानंदे।